अध्याय चार, पल पल परिवर्तित प्रकृति परिवेश। आधुनिक कवि की सामाजिक स्वाधीनता और वैयक्तिक विकास की भावना यदि एक ओर प्राचीन रूढ़ मर्यादाओं के विरोध के रूप में प्रकट हुई तो दूसरी ओर प्रकृति प्रेम के रूप में। प्रकृति प्रेम से सामाजिक स्वाधीनता और वैयक्तिक विकास का क्या संबंध है, यह सहसा समझ में नहीं आता। लेकिन जब हम स्वच्छंदतावादी कवियों के मुख से यह सुनते हैं कि कविता करने की प्रेरणा उन्हें प्रकृति से मिली, तो सोचना चाहिए कि प्रकृति में आखिर वह कौन सी शक्ति थी जिसने मुक्तिकामी स्वच्छंदतावादी कवि को सबसे अधिक आकृष्ट किया। राष्ट्रीय जागरण के उस युग की प्रायः अनेक कविताओं और कहानियों में दिखलाया गया है कि देश प्रेम की भावना प्रकृति प्रेम से उत्पन्न हुई है और फिर उसके परिणाम स्वरूप भावुक हृदय देश सेवा तथा देशोद्धार के लिए प्रवृत्त हुए। चंडी प्रसाद हृदयेश की संकल्प कहानी में दिखाया गया है कि राजीव, सरोजनी और कुमुद का पूरा परिवार प्रकृत आनंद की खोज में घर से बाहर उन्मुक्त प्रकृति में निकल पड़ता है और वहां वे एक योगी राज की कृपा से देखते हैं कि हिमालय के तुषार मंडित श्रृंग पर रत्न किरीट धारिणी अपूर्व लावण्यमयी एक देवी मूर्ति चंद्रिका से भी उज्ज्वल अंबर परिधान किए हुए खड़ी है। प्रश्न करने पर योगीराज बतलाते हैं कि यह मातृभूमि की मूर्ति है। वे उस मूर्ति के सामने नतमस्तक होते हैं और देश सेवा का संकल्प लेते हैं। देश प्रेम का आरंभ प्रकृति प्रेम से किस तरह होता है, इसे समझाते हुए आचार्य शुक्ल कहते हैं यदि किसी को अपने देश से प्रेम है तो उसे अपने देश के मनुष्य, पशु, पक्षी, लता, गुल्म, पेड़, पत्ते, कण, पर्वत, नदी, निर्जर सबसे प्रेम होगा। सबको वह चाह भरी दृष्टि से देखेगा, सबकी स्तुति करके विदेश में आंसू बहाएगा। जो यह भी नहीं जानते कि कोयल किस चिड़िया का नाम है, वे यदि 10 बने ठने मित्रों के बीच प्रत्येक भारतवासी की औसत आमदनी का पर्ता बताकर देश प्रेम का दावा करें तो उनसे पूछना चाहिए कि भाइयों, बिना परिचय का यह प्रेम कैसा। लेकिन आधुनिक युवक प्रकृति में गया क्यों? क्या देश प्रेम के लिए? नहीं, क्योंकि यह भाव तो प्रकृति में जाने के बाद उत्पन्न हुआ। तो क्या स्वयं प्रकृति से प्रेम के कारण? नहीं, क्योंकि प्रेम से पहले तो परिचय की आवश्यकता है। तब फिर आधुनिक युवक अपने समाज को छोड़कर प्रकृति के उन्मुक्त क्षेत्र में क्यों गया? इसी क्यों का जवाब राम नरेश त्रिपाठी का पथिक अपने प्रिया को देता है। पुण्य चरित सज्जन से विषयी कलमश मध्य निवासी, न्यायी से वंचक दाता से कृपण विशेष विलासी, जहाँ श्रमी से क्रय विक्रय वेश्या सुखी सती से, निर्जन वन है परम सुखद उस न्याय रहित जगती से। क्योंकि यहाँ प्रेम का राज्य है, अनंत सुषमा है, अक्षय सौंदर्य है और सबसे बढ़कर यहाँ अबाध स्वच्छंदता है। पथिक अपने प्रिया से कहता है, जाना नहीं चाहता हूँ मैं क्षण भर को भी जग में, चलता रहूँ यही इच्छा है सदा प्रेम के मग में। यह इच्छा है नदी और नालों का वेश धरूंगा, गाता हुआ गीत मस्ती से पर्वत से उतरूंगा। यह इच्छा है वन सुगंध फूलों के बीच बसूंगा, यह इच्छा है कुंज कुंज में वायु बना विचरूंगा। पुरानी समाज व्यवस्था के घुटते हुए वातावरण की अपेक्षा आधुनिक युवक को प्रकृति के बीच खुला वातावरण मिला। प्रकृति के राज्य में उसे पशु पक्षियों, नदी नालों, हवा बादलों सब में उन्मुक्त और निरंकुश स्वच्छंदता के दर्शन हुए। इसी स्वाधीनता के टोह में आधुनिक कवि प्रकृति के क्षेत्र में आया। पुरानी समाज व्यवस्था में उसकी वैयक्तिकता खो गई थी, लोग हर जगह उसे बुरी तरह घेरे रहते थे। सम्मिलित परिवार में एकांत का सर्वथा अभाव था। एक वाक्य में वर्ड्सवर्थ के अनुसार, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। इस जड़ सामूहिकता तथा सामाजिकता से उभरने के लिए आधुनिक युवक ने प्रकृति में प्रवेश किया और यहाँ उसे अपने व्यक्तित्व के विकास का वातावरण दिखाई पड़ा और यहीं उसे अपनी जन्मभूमि के प्रति प्रेम तथा कर्तव्य का अनुभव हुआ। इससे एक नई बात पर प्रकाश पड़ता है, वह यह है कि वैयक्तिक स्वाधीनता से ही स्वस्थ सामाजिकता का विकास संभव है। पुराने ढंग की निर्वैयक्तिक अथवा व्यक्तित्व को दबाने वाली सामाजिकता से राष्ट्रीय भावना का उदय न हो सका। लेकिन ज्यों ही आधुनिक युग में लोगों ने व्यक्तिगत स्वाधीनता का अनुभव किया, राष्ट्रीय स्वाधीनता की ओर भी कदम उठाया। पारिवारिक सीमा में इसी बात को यूँ समझ सकते हैं कि विशाल सम्मिलित परिवार में लोगों के बीच उतना सौहार्द नहीं रहता जितना उसके विघटित हो जाने के बाद छोटे छोटे परिवारों की विभिन्न इकाइयों में हो जाता है। इसलिए आधुनिक युग के प्रभाव से व्यक्तिगत स्वाधीनता, छोटे छोटे परिवारों की रचना, नूतन सामाजिकता और राष्ट्रीयता का विकास प्रायः एक साथ और अन्योन्याश्रित रूप में हुआ। नवीन आर्थिक व्यवस्था ने नौकरी पेशा व्यक्तियों की वृद्धि की। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने बीवी बच्चों को घर से लेकर शहरों में बसने के लिए मजबूर हुए। शहर के भी बड़े बड़े परिवार वाणिज्य व्यवसाय की सुविधा के लिए अथवा परिवार के सदस्यों की व्यक्तिगत संपत्ति के कारण विभाजित होने लगे। इस तरह लोगों को एक हद तक वैयक्तिक स्वाधीनता मिली। नई शिक्षा ने विविध संस्थाओं तथा कार्यों का जाल बुना। व्यक्ति व्यक्ति के बीच अनेक स्तरों पर सामाजिक संबंध स्थापित हुए। ऐसे नवीन सामाजिक संबंध समूचे देश में स्थापित हुए। रेल, तार, डाक वगैरह ने इन सभी सामाजिक इकाइयों को एक राष्ट्रीय चेतना में बांध दिया और देश में राजनीतिक स्वाधीनता की लहर दौड़ गई। इस प्रकार आधुनिक व्यक्ति का प्रकृति की ओर दौड़ना व्यक्तिगत स्वच्छंदता की आकांक्षा के लिए तो था ही, व्यक्तिगत स्वाधीनता का परिणाम भी था। यदि यह नूतन प्रकृति परिचय इस स्वाधीनता का परिणाम न था तो छायावाद युग से पूर्व द्विवेदी युग और द्विवेदी युग से पूर्व भारतेंदु युग तथा उससे भी पूर्व के 500-600 वर्षों के संपूर्ण मध्ययुग में ऐसा प्रकृति प्रेम संभव क्यों नहीं हो सका। प्रकृति तो पहले से ही मौजूद थी और वह भी लगभग इसी रूप में, बल्कि आधुनिक रूप से अधिक वन्य रूप में। फिर भी पूर्ववर्ती कवि उससे उदासीन रहे। आधुनिक वैज्ञानिक युग के लोगों की अपेक्षा मध्ययुग के धार्मिक लोगों में प्रकृति के प्रति श्रद्धा भी अधिक थी। फिर भी वे लोग प्रकृति सौंदर्य की उपेक्षा करते रहे। कुछ लोगों को यह विरोधाभास प्रतीत हो सकता है, किंतु यह सच है कि विज्ञान के द्वारा प्रकृति से संघर्ष करते हुए भी आधुनिक मानव ने उसे प्रेम किया। जिस प्रकृति से संघर्ष, उसी से प्रेम, यह आधुनिक युग का ही सत्य नहीं है बल्कि मानव जाति के समूचे इतिहास का यही निष्कर्ष है। आदिम युग से ही मनुष्य भयंकर वन्य प्रकृति से संघर्ष करता हुआ उसे अपने अनुकूल बनाकर उसके सौंदर्य का उद्घाटन करता चला आ रहा है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि मानव स्वयं भी प्रकृति के अंतः संघर्ष का परिणाम है। वह प्रकृति से ही पैदा हुआ है और प्रकृति का सर्वोत्तम विकास है। इसलिए मानव का अस्तित्व में आना ही प्रकृति पर विजय है। तात्पर्य यह है कि छायावादी कवियों का प्रकृति की ओर झुकना, प्रकृति को इतना महत्व देना, प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता को काव्य में प्रदर्शित करना और प्रकृति के सौंदर्य को उद्घाटित करना, यह सब आधुनिक विज्ञान का परिणाम है। विज्ञान ने प्रकृति के रहस्यों को जानने की चेष्टा की। धर्म ने प्रकृति के प्रति अंधश्रद्धा का भाव जगाकर जहाँ प्रकृति को जानने से रोका, वहाँ विज्ञान ने विवेक के द्वारा इसका रहस्य उद्घाटन किया। धार्मिक अंधविश्वास ने जिस प्रकृति से मानव को बांध रखा था, विज्ञान ने उसी को बंधन से मुक्त किया। विज्ञान ने मनुष्य को प्रकृति से अलगा कर फिर से प्रकृति के साथ अच्छी तरह से लगा दिया। इस तरह नवीन औद्योगिक व्यवस्था ने वैयक्तिक परिवारों को सम्मिलित कुटुंब से अलगा कर उनमें उच्च स्तर का परस्पर स्नेह सौहार्द स्थापित किया, उसी तरह विज्ञान ने भी मनुष्य को प्रकृति के बंधनों से मुक्त करके प्रकृति के प्रति उसकी रगात्मकता बढ़ा दी। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि जिस युग में मनुष्य ने प्रकृति पर सबसे अधिक विजय प्राप्त की, उसी समय उसने प्रकृति पर सबसे अच्छी कविताएं लिखी। वाल्मीकि कालिदास का प्रकृति काव्य प्रकृति पर आरंभिक विजय का परिणाम है, तो छायावादी कवियों का प्रकृति चित्रण आधुनिक विजय का। इस प्रकार सामाजिक स्वाधीनता और प्राकृतिक मुक्ति से छायावादी कवि को प्रकृति का जो नया परिचय प्राप्त हुआ, वह एकदम नूतन जीवन दृष्टि के समान मालूम हुआ। छायावादी कवि को ऐसा लगा कि यह आलोक स्वयं प्रकृति से ही आ रहा है। रविंद्रनाथ की निर्झरेर स्वप्नभंग कविता में इस प्राकृतिक आलोक का चित्रण बड़े ही भावावेगपूर्ण ढंग से हुआ है। आचे प्रभाते रविवर कर केमने पशलो प्राणेर पर केमने पाशलो गुहार आधारे प्रभात पाखिर गान ना जाने कौन रे एक दिन परे जागिया उठलो प्राण। और इस आलोक में उन्हें दिखाई पड़ा कि भूधर थर थर काँप रहा है, राशि राशि शिलाएं खसक रही हैं, सलिल फेलिल होकर फूल फल रहा है, दारुण दौर से गरज रहा है और यहाँ वहाँ पागल की तरह मत्त होकर दौड़ रहा है। प्रभात की पहली किरण ने जिस प्रकार रविंद्रनाथ के निर्जर हृदय का स्वप्न भंग कर दिया, उसी प्रकार सुमितानंदन पंत के लिए को भी स्वप्न में चौंका गई प्रभात। प्रथम रश्मि ने पंत की बाल विहंगनी को गाना तो सिखाया है, उनकी तिमरा छन्न जगत को सहसा विभिन्न नाम रूपों में बदल दिया। जहाँ निराकार तम के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई न देता था, वहाँ सुंदर सृष्टि दिखाई पड़ने लगी। निराकार तम मानो सहसा ज्योतिपुंज में हो साकार, बदल गया द्रुत जगत जाल में धर कर नाम रूप नाना। फिर तो ध्रुमदल पुलकित हो सिहर उठे, सुप्त समीरण अधीर हुआ, कुसुम मधुरों पर हास झलका और खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, जागी सुर भी डोले मधुबाल, स्पंदन कंपन औ नवजीवन सीखा जग ने अपनाना। कवि को संसार का नया परिचय प्राप्त हुआ। निराला के तुलसीदास के विषय मुख जब चित्रकूट के तरु विरुद्ध आए तो उनके भी मन में नए भाव पैदा हुए। प्रकृति ने उनसे ऐसी अभूतपूर्व भाषा में बातें की कि वे उसे अनुभव करते हुए भी ठीक ठीक न समझ सके। जैसे उषा को कोहरे का टिंगड़ा जाल घेरे हो, उसी तरह प्रकृति भी एक ऐसी भाषा में बातें कर रही थी जो पूरी तरह समझ में न आती थी। वह भाषा छिपती छवि सुंदर, वह खुलती आभा में रंग कर, वह भाव कुरल कुहरे सा भरकर भाया। फिर भी प्रकृति ने उन्हें एक ऐसी चेतना का पता दिया जिसके स्पर्श से ही पाषाण खंड हार बनते हैं, नहीं तो प्रकृति में झरने झाड़ी नदी कगार पशु पक्षियों के विहार को छोड़कर और कुछ नहीं है। तुलसी को यह चेतना पूर्वजनों के संसार का ही उदय प्रतीत हुई। प्रकृति ने उनके मन में कल्पना के पंख लगा दिए और वह मुक्त नभ में वन विहंग की तरह उड़ चला। प्रकृति दर्शन से छायावादी कवि को यह जो नया आलोक मिला, उसने सामान्य रूप से उसकी संपूर्ण जीवन दृष्टि बदल दी और विशेष रूप से प्रकृति संबंधी सौंदर्य दृष्टि। उसे पहली बार प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता का बोध हुआ। पहले अधिक से अधिक प्रकृति का चित्रण या तो कथा प्रसंग में किया जाता था अथवा मानवीय क्रिया की पृष्ठभूमि के रूप में, जैसे कुमार संभव के आरंभ में हिमालय का विस्तृत वर्णन कथा प्रसंग का एक अंग है और मेघदूत का मेघ विरह वेदना का दूत मात्र है। लेकिन हिंदी के भक्त कवियों अथवा रीतिवादी कवियों ने तो प्रकृति को इससे भी गौण स्थान दिया है। वहाँ प्रायः प्रकृति का चित्रण या तो अप्रस्तुत विधान के रूप में हुआ है अथवा उद्दीपन के रूप में। इसलिए मध्ययुग के कवियों ने अधिक से अधिक प्राकृतिक वस्तुओं का नाम गिनाकर ही संतोष किया है और उन प्राकृतिक वस्तुओं की सूची भी अधिक लंबी है। यही कोकिल, चातक, मोर, दादू जैसे प्राणी तथा आम्र मंजरी, पलाश, बेला, चमेली, गुलाब आदि कुछ फूल हैं और छह ऋतुओं के अनुसार काले बादल, शरत, राका, वसंत, श्री आदि। छायावाद युग ने प्रकृति को इतना महत्व दिया कि किसी अपरिचित और नन्हे से फूल को भी स्वतंत्र रूप में एक कविता का विषय बनाया। अकेली एक ओस की बूंद पर भी पूरी की पूरी कविता लिखी जा सकती है, उसमें और किसी चीज का दखल ना हो। अब कोई आवश्यकता नहीं कि बादल किसी भाव का संदेश वाहक ही बनकर आए तो आए। पंत ने स्वतंत्र रूप से बादल पर एक पूरी की पूरी कविता लिखी जिसमें बादल चेतन प्राणी की तरह अपने बारे में स्वयं कहता है। कहाँ कालिदास का धूम ज्योति सलिल मरुता सन्निपात और कहाँ पंत का स्वतः चेता बादल। कालिदास का मेघ स्वयं नहीं सोच सकता था और न कह ही सकता था कि वह सुरपति का अनुचर है अथवा जगत प्राण का सहचर है। उसके बारे में सब तो चेतन अचेतन में विवेक को देने वाला कामार्थ यक्ष ही कह सकता है, लेकिन पंत का बादल अपनी चेतना के बारे में स्वयं सतर्क है। इस प्रकार उपेक्षित प्रकृति को छायावादी कवि ने सम्मान दिया और उसे मध्ययुगीन बंधनों से मुक्त किया। यदि प्रकृति ने मध्ययुगीन बंधनों से मानव को मुक्त किया तो मानव ने भी बदले में प्रकृति को मुक्त किया। ठीक उसी तरह जैसे आकाशदेव की चंपा ने बुद्धगुप्त को मुक्त होने के लिए जगाया और फिर बुद्धगुप्त ने चंपा को, और या प्रकृति पर मानव की कोई कृपा नहीं थी। प्रकृति को मुक्त किए बिना मनुष्य अपने मुक्ति का पूरा पूरा उपभोग कर ही नहीं सकता। इस तथ्य को आचार्य शुक्ल जैसे पंडित ने भी स्वीकार किया और पुराने काव्यशास्त्र की भाषा में उन्होंने कहा कि यूनाइटेड कामा प्राकृतिक वर्णन केवल अंग रूप से ही हमारे भावों का आलंबन नहीं है, स्वतंत्र रूप में भी है। यूनाइटेड कामा पुराने आचार्यों की चुटकी लेते हुए वे कहते हैं कि यूनाइटेड कामा रीति ग्रंथों की बदौलत रस दृष्टि परिमित हो जाने के कारण उसके संयोजक विषयों में से कुछ तो उद्दीपन में डाल दिए गए और कुछ भाव क्षेत्र से ही निकाले जाकर अलंकार के हाथे में हाँक दिए गए। यूनाइटेड कामा फलतः यूनाइटेड कामा साहित्य के आचार्यों की दृष्टि में वन उपवन ऋतु आदि श्रृंगार के उद्दीपन मात्र हैं, वे केवल नायक या नायिका को हंसाने या रुलाने के लिए हैं। यूनाइटेड कामा भावों की व्यापकता के लिए शुक्ल जी ने प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार करके उसके संपर्क में आने का आग्रह किया। उनका कहना है कि यूनाइटेड कामा मनुष्य शेष प्रकृति के साथ अपने रागात्मक संबंध का विच्छेद करने से अपने आनंद की व्यापकता को नष्ट करता है। बुद्धि की व्याप्ति के लिए मनुष्य को जिस प्रकार विस्तृत और अनेक रूपात्मक क्षेत्र मिला है, उसी प्रकार भावों की व्याप्ति के लिए भी जब यदि आलस्य या प्रमाद के कारण मनुष्य इस द्वितीय क्षेत्र को संकुचित कर लेगा तो उसका आनंद पशुओं के आनंद के विशाल से विशाल किसी प्रकार नहीं कहा जा सकेगा। यूनाइटेड कामा इस तरह छायावादी कवियों ने आधुनिक युग के मनुष्य को पशुओं के आनंद से अधिक विशाल आनंद देने और उसके भागों का विस्तार करने के लिए उनका संबंध फिर से शेष प्रकृति के साथ जोड़ दिया और यह बहुत बड़ा काम है। संपर्क में आते ही प्रकृति मनुष्य के लिए सहचरी, सखी, प्रेयसी, माँ सब कुछ हो गई। एकांतवासी कवि पंत के बाल हृदय के साथ तो प्रकृति सखी की तरह घुल मिल गई। छाया से आत्मीयता जताते हुए पंत कहते हैं, हाँ सखी आओ बाह खोल हम लगकर गले जुड़ा ले प्राण, फिर तुम तम में मैं प्रियतम में हो जामे द्रुत अंतर्धान। और माँ देवी प्रकृति की विराटता में अखिल जगती की माँ का गरिमा में रूप देखते हुए कहती हैं, इन स्निग्ध लटों से छा दे तन पुलकित अंकों में भर विशाल, झुक सस्मित शीतल चुम्बन से अंकित करे उसका मृदुल भाल, दुलरा देना बहला देना यह तेरा शिशु जग है उदास। वस्तुतः प्रकृति ने जिस दिव्य रूप में आधुनिक मानव को दर्शन दिया था उसकी विराटता के सामने कवि की अश्रद्धा स्वाभाविक है। इसीलिए कुछ कवियों ने विश्व सुंदरी प्रकृति पर चेतनता का आरोप करके उसे विश्व प्रिया शक्ति का रूप दिया और कुछ ने प्रकृति की अनेक रूपता में परिवर्तनशील विभिन्नता में तारतम्य खोजने के फलस्वरूप उसके कारण पर मधुरतम व्यक्तित्व का आरोपण करके अपना प्रिय बना लिया। अपनी प्रवृत्ति प्रसाद की है, पहली प्रवृत्ति प्रसाद की है और दूसरी महादेवी की। पहले के कवियों ने प्रकृति के इस विराट रूप को नहीं देखा था। उन्होंने केवल कोकिल, चातक, मोर, राका, वर्षा, टेसु, आम वगैरह देखा था। इस तरह उन्होंने प्रकृति के केवल खंडों को देखा। इन खंडों से निर्मित प्रकृति का जो अखंड रूप है उसे देखने की दृष्टि आधुनिक कवि को ही प्राप्त हुई। जिस तरह महाभारत युद्ध आरंभ होने से पूर्व अर्जुन श्री कृष्ण को अपना सखा समझकर उनकी महिमा से अनभिज्ञ होने के कारण हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा आदि संबोधन से पुकारते थे, उसी तरह पूर्ववर्ती कवि भी प्रकृति की महिमा से अनभिज्ञ होने के कारण उसके साथ अत्यंत सामान्य व्यवहार करते थे। लेकिन अब तो इस अर्जुन को प्रकृति ने श्री कृष्ण के ही तरह अपना विराट रूप दिखला दिया। प्रकृति की सार्वभौम रूप से अभिभूत होकर छायावादी कवि ने अनेक भावोच्छ्वसित गीत लिखे। लेकिन जब विराटता का आतंक कुछ कम हुआ तो उससे हृदय में एक और ही आलोक उदित हुआ। इस आलोक में छायावादी कवि ने प्रकृति के परिचित दृश्यों को नए रूप में देखा और अनेक अपरिचित तथा अदृश्य वस्तुओं पर भी दृष्टिपात किया। जैसे संध्या और निशा पूर्व परिचित दृश्य हैं, इनका वर्णन कवि जन न जाने कब से करते आ रहे हैं, लेकिन छायावादी कवि ने संध्या और निशा में नवीन सौंदर्य देखा। संध्या का वर्णन द्विवेदी युग के कवि हरिओद इस प्रकार करते हैं, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी अब राजती कमलनी कुलवल्लभ की प्रभा। इसमें गगन का लोहित होना और तरशिखा का प्रभा का रचना इन दो स्थूल रंगों का चित्रण है। लेकिन निराला के संध्या सुंदरी जब मेघमय आसमान से धीरे धीरे उतरती है तो उसके मंथर गति में अपूर्व ढंग की शांति नीरवता और शीतलता का अनुभव होता है। यही नहीं, जब वह अलसता की शीलता सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाँह छांसी अंबर पथ से चली तो उसके तिमिरांचल में चंचलता का कहीं नया आभास मिलता है। निराला की संध्या सुंदरी की गति जिस छंद में मध उठी है, उसका रूप जिन सूक्ष्म रेखाओं और छायाओं में आभासित हुआ है, वह अभूतपूर्व है। यही अंतर हरियावत के नैश वर्णन और प्रसाद के नैश चित्रण में है। हरियावत की सजी धजी आभूषणों से लदी गोल और चौड़े मुंह वाली रात यह है। अत्युज्ज्वला पहन तारक मुक्त माला दिव्यंबरा बन अलौकिक कौमुदी से भाव परि परम मुग्ध करी हुई थी राका कलाकार मुख रजनी पुरंदरी। इस रजनी पुरंदरी को प्रसाद की माधव यामिनी के बराबर रखकर देखिए और उसमें हो चला जैसे सहज सहवास मधिर माधव यामिनी का धीर पद विन्यास कालिमा घुलने लगी घुलने लगा आलोक इसी निभृत अनंत में बसने लगा अवलोक। कहाँ हरियोत की रजनी की चटक मटक और कहाँ प्रसाद की कामनी का धीर पद विन्यास, यहाँ अत्युज्ज्वला तारक माला और कहाँ घुलती हुई कालिमा में घुलता हुआ आलोक। भाव भरी का प्रमाण पत्र पाकर भी हरियोत की रजनी भाव शून्य है, लेकिन प्रसाद की यामिनी उस प्रमाण पत्र के अभाव में भी भाव प्रमण है। यह तो ही परिचित दृश्यों की बात। पंत ने हिंदी कविता में पहली बार कुछ ऐसे पर्वतीय दृश्यों का चित्रण किया जो कवियों तथा पाठकों के लिए सर्वथा नए थे। यह रहा शैल और जलद का खिलवाड़। बादलों का छाया मय मेल घूमते हैं आंखों में फैल अवनी और अंबर के भी खेल शैल में जलद जलद में शैल शिखर पर बिचर मारुत रखवाल वीणु में भरता है जब स्वर में मनो से मेघों के बाल कुदकते थे प्रमुदित गिर पर और पहाड़ी आकाश की भी अपनी विशेष शोभा होती है। व्यंग सा बैठा गिर पर सुहाता था विशाल अंबर। दूसरी ओर प्रसाद का समुद्र वर्ण है। समुद्र के रौद्र रूप का जैसा चित्रण कामायनी के चिंता सर्ग में हुआ है, संपूर्ण हिंदी कविता में उससे पहले नहीं मिलता। समुद्र का वर्णन बेचारे रीतिकाल के कवि क्या करते, उन्हें घर की दीवारों तथा अरहर के खेतों से फुर्सत न थी, फिर वे समुद्र कैसे देखते। और उधर गरजते सुंदलहरियाँ कुटिल काल के जालों से चली जा रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी सबल तरंगा घातों से उस क्रुद्ध सिंधु के विचलित सी व्यस्त महा कच्छप सी धरणी ऊभ चूब सी करती सी। पुराने दृश्यों को नए रूप में तथा एकदम नए दृश्यों को चित्रित करने के अतिरिक्त शाहवादी कवियों ने प्रकृति के विविध ऐन्द्रिय बोझ जगाने वाले दृश्यों का भी अंकन किया। लाल नीले रंगों के बादल भौरा कोकिल चातक आदि के स्वर तथा कुछ फूलों की गंध की चर्चा संभवतः पहले के भी कवियों ने की है, लेकिन वर्ण ध्वनि गंध स्पर्श और स्वाद संबंधी सूक्ष्म ऐन्द्रिय बोध जगाने वाले दृश्य जिस मात्रा में छायावादी कवियों ने आके पहले नहीं मिलते। कांपती हुई अग्निशिखा के रंग को स्पष्ट करते हुए प्रसाद उसे मघुपिंगल तरण अग्नि कहते हैं तो हिम संस्कृति पर पड़ते हुए आलोक का वर्ण सौंदर्य दिखलाने के लिए इस तरह की कल्पना करते हैं। सित सरोज पर क्रीड़ा करता जैसे मधुमय पिंग पराग। दूसरी ओर पंत नील लहरों पर सांध किरण के बुझते हुए आलोक को इन शब्दों में विभक्त करते हैं। लहरों पर स्वर्ण रेख सुंदर पड़े नई नील ज्यों अधरों पर अरुणाई प्रखर शिशिर से डर। वर्ण विवेक की ही तरह ध्वनि विवेक के द्योतक चित्र पंत के यहाँ काफी मिलेंगे। रात के सन्नाटे के बारे में पंत कहते हैं, गुंजित अलिसा निर्जन अपार और सांध वन में क्रमशः गिरती हुई नीरवता के लिए पत्रों के आनत अधरों पर सो गया निखिल वन का मरमर। आपस में विभिन्न प्रकार के गुले मिले स्वर आते रहते हैं, उन्हें एक एक करके अलगाते हुए पंत कहते हैं, पपीहों की वह पीन पुकार निर्झर की भरी झरझर झिंगरों की झीनी झनकार घनों की गुर गंभीर घर बिंदुओं की छंती छनकार दादुरों के वह दुहरे स्वर हृदय हरते हैं विविध प्रकार शैल पावस के प्रश्नोत्तर। और तो जो है सो है ही, लेकिन पहाड़ों में वर्षा के स्वर की प्रतिध्वनि का यह चित्र अद्वितीय है। छायावादी कवियों ने प्रकृति के विषय में जो इतने सूक्ष्म और नवीन सौंदर्य बोध का परिचय दिया, वह इसलिए नहीं कि इस बीच प्रकृति में कोई नया सौंदर्यवादक दृश्य जुड़ गया था अथवा पूर्ववर्ती कवियों की अपेक्षा छायावादियों में प्रतिभा अधिक थी। वस्तुतः यह नवीन सौंदर्य बोध मानव और प्रकृति के नवीन संबंध से उत्पन्न हुआ है। प्रकृति ने मनुष्य में सौंदर्य बोध जगाया और मनुष्य ने उस सौंदर्य बोध के द्वारा प्रकृति में छिपे हुए नए नए सौंदर्य का उद्घाटन किया। तेरे नयनों से मनुष्य ने ज्यों ज्यों प्रकृति को देखा, खरी निकाई निकलती चली गई। इस तरह प्रकृति और मानव दोनों परस्पर वर्धमान हुए। लेकिन प्रकृति के सौंदर्य से छायावादी कवि कभी कभी इतना कल्पना प्रवण हो उठा कि प्रस्तुत प्राकृतिक दृश्य को देखते देखते उसके मन में कल्पना के पंख लग गए और वह ऊपर उड़ चला। फलतः उसकी आंखों के सामने अप्रस्तुत से मिलते जुलते तथा उससे संबद्ध अनेक अप्रस्तुत दृश्य तैर आए। जैसे छाया को देखते ही पंत बोल उठते हैं, कहो कौन तुम परिहत वसना, मलान मना भूपति पत्यासी, वातहता विच्छिन्न लतासी, रतिश्रांता ब्रज वनितासी। ऐसी अप्रस्तुत योजना में छायावादी कवियों ने आकर साम्य की अपेक्षा एक नए ढंग के प्रभाव साम्य पर विशेष ध्यान दिया। जहाँ तक यह प्रभाव साम्य उसी गहरी अनुभूति पर आधारित रहता था, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कभी कभी वह भावावेग जनित कल्पना में इतनी दूर बह जाता था कि सारी अप्रस्तुत योजना केवल कौतुक के लिए जुटाए हुए सामानों की तरह मालूम होने लगती थी। जैसे उसी छाया को पंत पछतावे की परछाएँ, कटी छटी नवकविता, दुर्बलता अंगड़ाई, दर्शन की अति जटिल ग्रंथि आदि सिखाने लगते हैं, तो छाया से हटकर मन इन भिन्न भिन्न वस्तुओं पर बहक जाता है और थोड़ी देर बहकने के बाद इस बहक का अनुभव करके खिन्न हो उठता है। दूसरी ओर प्रकृति सौंदर्य को देखकर कवि का मन कभी कभी एकदम अंतर्मुखी हो उठता है और वह प्रकृति के वस्तुनिष्ठ सौंदर्य को नहीं देख पाता। उसके स्थान पर वह अपने ही सूक्ष्म मनोभाव को देखने लगता है। इस भावनिष्ठता के परिणाम स्वरूप पंत की चांदनी धीरे धीरे कपूर से उड़ती उड़ती इतनी अदृश्य हो जाती है कि अंत में उन्हें हैरान होकर कहना पड़ता है, वह है, वह नहीं, अनिर्वच। जब तक वह लघु परिमल के घन सी थी तब तक तो गनीमत, लेकिन जब वह अनुभूति मात्र सी उर में रह गई तो भाववादी दृष्टिकोण की हद हो गई। पर ऐसा पंत के ही यहाँ ज़्यादा हुआ है।